I am Oratulan Heather, writer, and I am recording from my works as part of the bicentenary celebrations of the Library of Congress for the archives of world literature on tape. Is afsane ka unwan hai Dalan Wala. ये एक रिहायशी इलाके का नाम था जो देहरादून में नाम है अब भी है जहां रिहायशी इलाका था जहां बड़ी खूबसूरत कोठियां बनी हुई थी और बड़ा पुरफजा इलाका था इसमें हम लोग रहते थे उसके बारे में मैंने लिखा है तकरीबन ये सही मतलब सच्ची कहानी है हर तीसरे दिन सपहर के वक्त एक बेहद दुबला पतला बूढ़ा घिसे और जगह जगह से चमकते हुए स्याह कोट पतलून में मलबूस स्याह गोल टोपी ओढ़े पतली कमानी वाली छोटे छोटे शीशियों की ऐनक लगाए हाथ में छड़ी लिए बरसाती में दाखिल होता और छड़ी को आहिस्ता आहिस्ता बजरी पर खटखटाता फकीरा बाहर आकर बाजी को आवाज देता बिटिया चलिए साइमन साहब आए गए बूढ़ा बाहरी से बाग की सड़क का चक्कर काटकर पहलू के बरामदे में पहुंचता एक कोने में जाकर जेब में से मैला सा रुमाल निकालकर झुकता फिर आहिस्ता से पुकारता रेशम 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 दौड़ती भी आती बाजी बड़े आर्टिस्टिक अंदाज में सरोत कंधे से लगाए बरामदे में नमूदार होती तख्त पर बैठकर सरोत का सुर्ख बनारसी गिलास उतारती और सबक शुरू हो जाता बारिश के बाद जब बाग भीगा भीगा सा होता और एक अनोखी सी ताजगी और खुशबू फजा में तैरती तो बूढ़े को वापस जाते वक्त घास पर गिरी कोई खुबानी मिल जाती वो उसे उठाकर जेब में रख लेता रेशम उसके पीछे पीछे चलती अक्सर रेशम शिकार की तलाश में झाड़ियों में गायब हो जाती या किसी दरख्त पर चढ़ जाती तो बूढ़ा सर उठाकर एक लम्हे के लिए दरख्त की हिलती हुई शाख को देखता और फिर सर झुकाकर फाटक से बाहर चला जाता तीसरे रोज सपहर को फिर उसी तरह बजरी पर छड़ी खटखटाने की आवाज आती ये मामूल बहुत दिनों से जारी था जब से पड़ोस में मिसेज जोक माया चैटर्जी कलकत्ते से आकर रही थीं, इस महल्ले के वासियों को बड़ा सख्त एहसास हुआ था कि उनकी जिंदगियों में कल्चर की बहुत कमी है मौसीकी की हद तक इन सबके गोल कमरों में एक एक ग्रामफोन रखा था अभी रेडियो आम नहीं हुए थे और फ्रिजिडियर स्टेटस सिंबल नहीं बना था टेप रिकॉर्डर शायद ईजाद ही नहीं हुए थे और सामाजिक रुजबे की अलामत अभी सिर्फ कोठी कार और बैरे पर मुश्तमिल थी लेकिन जब मिसेज जोग माया चटर्जी के वहां सुबह शाम हारमोनियम की आवाजें बुलंद होने लगी सर्वे ऑफ इंडिया के आला अफसर की बीवी मिसेज गोस्वामी ने महकमा जंगलात के आला अफसर की बीवी मिसेज फारूकी से कहा बहन जी हम लोग तो बहुत ही बैकवर्ड हैं वो देखिए इन बंगालियों को हर चीज में आगे आगे और मैंने तो यहां तक सुना है कि इन लोगों में जब तक ये लड़की गाना बजाना ना सीख ले उसका ब्याह नहीं होता मिलिट्री एकेडमी के आला अफसर की बीवी मिसेज जसवंत सिंह ने इजहार ख्याल किया ए बहन हम मुसलमानों में तो गाना बजाना अच्छा नहीं समझा जाता मगर आजकल का जमाना दूसरा है मैंने तो उनसे कह दिया मैं अपनी हमीदा को हारमोनियम जरूर सिखलाऊंगी मिसेज फारूकी ने जवाब दिया और इस तरह रफ्ता रफ्ता दारनवाला में आर्ट और कल्चर की हवा चल पड़ी। डॉक्टर सिन्हा की लड़की ने नाच सीखना भी शुरू कर दिया। हफ्ते में एक बार एक मुनहनी से गुरुजी आकर उंगलियों में सुरक्षित हुई बीड़ी थामे मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकालते, जी जी कत्ता तोम तिरंगा तरतक तुन तुन वगैरह, इन अल्फाज पर मुश्तमिल होती। वो तबला बजाते और तबला बजाते रहते और मिसेस सिन्हा की लड़की तोरों की चकफेरियों में चक्कर काटते काटते घुंघरों के चोट से उसके पांव जख्मी हो जाते। पड़ोस की एक नौजवान रईस सरदार अमरजीत सिंह ने वायलिन पर हाथाव करना शुरू किया। सरदार अमरजीत सिंह के वालिद ने डच ईस्ट इंडीज में काफी दौलत कमाई थी जब ये जमहूरिया इंडोनेशिया नहीं कहलाता था। सरदार अमरजीत सिंह एक शौकीन मिजाज रईस थे। जब वो ग्रामोफोन पर बड़े इनहमाक से डिब्बों का रिकॉर्ड खिजा में आग के चमन को उजाड़ देना है, मेरी खिली हुई कलियों को लूट लेना है न बताते तो दरीके में खड़े होकर वायलिन के तारों पर इसी इनहमाक से गद रगड़ा करते, वरना थेरी वाले से रंग बिरंगी छीटों के जॉर्जेट अपने साफों के लिए खरीदते और ये बढ़िया बढ़िया साफे बांध कर और दाढ़ी पर स्याह पट्टी जमा कर बड़ी हिफाजत से चढ़ाकर मिसेस फलक नाज मरवारी खान से मुलाकात के लिए चले जाते और उसी और अपनी जौदा सरदारनी जी से कह जाते कि वायलिन सीखने जा रहे हैं। इसी जमाने में बाजी को सरोद का शौक पैदा हुआ। वो मौसम गर्मा गुनागुन वाकयात से पुर था। सबसे पहले तो रेशम की टांग टूटी, फिर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाली मिस जोरा डर्बी ने आकर परेड ग्राउंड पर अपने झंडे गाड़े और डायना बैकेट पताला आलम हसीनाए लंदन कहलाई और डॉक्टर मिस जुबैदा सिद्दीकी को रात के 2 बजे गधे की जहामत का कुत्ता नजर आया। मिस्टर पीटर रॉबर्ट सरदार खां हमारी जिंदगियों से गायब हो गए। नेगस ने खुदकुशी कर ली और फकीरा की भावज गोरैया चिड़िया बन गई। चूंकि ये सब नहायत अहम वाकयात थे लिहाजा मैं सिलसिलेवार इनका तस्करा करती हूँ। मेरी बहुत खूबसूरत और प्यारी रेहाना बाजी जो मेरी चचाजात बहन थी बीए करने के बाद अलीगढ़ से चंद माह के लिए हमारे यहाँ आई थी। एक सुहानी सुबह बाजी सामने के बरामदे में खड़ी थी और डॉक्टर हून की बीवी से बातें कर रही थी कि अचानक बरसाती की बजरी पर हल्की सी खटखट हुई और एक नहीफ और मुनहनी से बूढ़े ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है यहाँ कोई लेडी सरोद सीखना चाहती हैं। बाजी के सवालात पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनकी माहाना फीस 5 रुपए है और वो हफ्ते में 3 बार 1 घंटा सबक देंगे। वो कर्नल रोड में पादरी स्कॉट की खाली कोठी के शागिर्द पेशे में रहते हैं। उनके बीवी बच्चे सब मर चुके हैं और बरसों से उनका जरिए माश सरोद है जिसके जरिए वो 8-10 रुपए महीना कमा लेते हैं। लेकिन इस हाबिका शहर में सरोद सीखने वाले ये कितने होंगे, बाजी ने पूछा। उन्होंने इसी धीमी आवाज में कहा, कभी कभी 2-1 तालिबे इल्म मिल जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुतालिक कुछ नहीं बताया। वो इंतहाई खुददार इंसान मालूम होते थे। उनका नाम साइमन था। पीर के रोज वो ट्यूशन के लिए आ गए। बाजी पिछले राउंड पर धूप में बैठी थी। मिस्टर साइमन को بھیج دو. انہوں نے فقیرہ سے کہا. باجی کی طرف جانے کے لیے فقیرہ نے ان کو اندر بلا لیا. اس روز بڑی سردی تھی اور اپنے کمرے میں میں اپنے کمرے میں بیٹھی کسی شٹر پٹر میں محض تھی. میرے کمرے میں سے گزرتے ہوئے ذرا ٹھٹک کر سائمن نے چاروں طرف دیکھا. آتش دان میں آگ لہک رہی تھی. ایک لمحے کے لیے ان کے قدم آتش دان کی طرف بڑھے اور انہوں نے آگ کی طرف ہاتھ ہتھیلیاں پھیلائیں. پھر جلدی سے فقیرہ کے پیچھے پیچھے چلے گئے. ریشم نے ان سے بہت جلدی دوستی کر لی. بڑے تعجب کی بات تھی کیونکہ ریشم ایک بے انتہا مغرور عقل کھری اور اپنے سیامی حسن پہ نازاں بلی تھی اور بہت کم لوگوں کو خاطر میں لاتی تھی. زیادہ تر وہ اپنی ساتن کی ریشمی جھالر والی ٹوکری کے گدیلوں پر بیٹھی رہتی اور کھانے کے وقت بڑی مکاری سے آنکھیں بند کر کے میز کے نیچے بیٹھ جاتی. اس کی ساری خاصیتیں ویب عورتوں والی ہیں, باجی کہتی ہیں. عورت کی خاصیت بلی کی سی ہے, چمکارو تو پنجے نکال لیتی ہے, بے رخی برتو تو خوشامد شروع کر رہی ہے. اور آدمی لوگوں کی خاصیت کیسی ہوتی ہے باجی, میں پوچھتی. وہ ہنسنے لگتی. وہ کہتی مجھے ابھی نہیں معلوم. باجی چہرے پر دل فریب اور مطمئن مسکراہٹ کیے باغ میں بیٹھی مظفر بھائی کو بے حد دلچسپ خط پڑھا کرتے ہیں جو ان کے نام میں دن بمبئی سے آتے تھے, جہاں مظفر بھائی انجینئرنگ پڑھ رہے تھے. مظفر بھائی میرے اور باجی کے چکرداد بھائی تھے اور باجی سے ان کی شادی طے ہو چکی تھی. جتنی دیر وہ باغ میں بیٹھتی کفور بیگم ان کے نزدیک گھاس پر پندان کھولے بیٹھی رہتی. جب باجی اندر چلی جاتی تو غفور بیگم شاگرد پیشے میں جا کر فقیرہ کی بھاوٹ سے باتیں کرتے ہیں یا پھر اپنی نماز کی چوکی پر آ بیٹھتے ہیں. غفور بیگم باجی کی بے حد وفادار انا تھی. ان کے شوہر نے جن کی علی گڑھ میں میرس روڈ پر سائیکلوں کی دکان تھی پچھلے برس ایک نوجوان لڑکی سے نکاح کر لیا تھا اور جب سے غفور بیگم اپنا زیادہ وقت نماز روزے میں گزارتی. سائمن کے آتے ہی ریشم دبے پاؤں چلتی آ کر خرخر کرنے لگتی. وہ فوراً جیب سے رومال نکال کر کچھ کھانے کو دیتے. شام کے وقت جب فقیرہ ان کے لیے چائے کی کشتی لے کر آتا تو وہ آدھی چائے تشتری میں ڈال کر فرش پر رکھ دیتے اور ریشم فوراً تشتری چاٹ جاتی اور فقیرہ بڑا بڑبڑاتا, ہمارے ہاتھ سے تو رانی صاحب دودھ بھی نہیں پیا تھا. فقیرہ ایک ہنسمکھ گڑوالی نوجوان تھا. دو سال قبل وہ چیٹھوں میں ملبوس نہر کی منیر پر بیٹھا اون اور سلائیوں سے موزے بن رہا تھا جو پہاڑیوں کا عام دستور ہے. تو سکھ نندن خندامہ نے اس سے پوچھا تھا کیوں بھائی نوکری کرو گے؟ اس نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے جواب دیا تھا مہینوں سے کچھ نہیں, بھوکوں مر رہا ہوں, کیوں نہیں کروں گا. تب سے وہ ہمارے یہاں اوپر کا کام کر رہا تھا اور ایک روز اس نے اطلاع دی تھی کہ اس کے دونوں بڑے بھائیوں کی مٹی ہو گئی ہے اور وہ دونوں بھاوج کو اپنی بھاوج کو لینے گڑوال جا رہا ہے. چند دنوں بعد اس کی بھاوج جل دھرا پہاڑوں سے آ کر شاگرد پیشے میں بس گئی تھی. ادھیڑ عمر کی ایک گوری چٹی عورت تھی جس کے ماتھے اور تھوڑی اور کلائیوں پر نیلے رنگ کے نقش و نگار کھدے ہوئے تھے. وہ نات میں سونے کی لونگ اور بڑا سا بلاق, کانوں میں بڑے بڑے سوراخوں میں لاک کے پھول پہنتی تھی اور اس کے گلے میں ملکہ وکٹوریا کے روپوں والی مالا بھی پڑی تھی. یہ تین گہنے اس کے تینوں شوہروں کی واحد جائیداد تھی. اس کے دونوں شوہر مرتے دم تک یاتریوں کا سامان ڈھوتے رہے تھے اور اتفاق سے کھٹے ہی ایک پہاڑ سے گر کر مر گئے تھے. جلدرا میٹھے لہجے میں बात करती थी और हर वक्त स्वेटर बुनती रहती थी। उसे कंठमाला का पुराना मर्ज था। फकीरा उसकी उसके इलाज मालजे के लिए फिक्र में रहता था और उससे बेहद मोहब्बत करता था। जलधरा की आमद पर बाकी नौकरों की बीवियों में आपस में चैमगोइयां हुई थी। एक रोज मैं अपनी छोटी सी साइकिल पर अपनी सहेलियों के यहां जा रही थी। रेशम पीछे पीछे आई। इस ख्याल से को सड़क पर आने वाली मोटरों से कुचल न जाए, मैंने साइकिल से उतरकर उसे खूब डांटा और सड़क पर उठाकर बार पर से अहाते में फेंक दिया। पैडल जोर से पांव मारकर तेजी से आगे निकल गई, लेकिन रेशम अहाते में कूदने के बजाय बार के अंदर लगे हुए तेज नोकीले कांटों में उलझ गई। उसके एक रान पर बुरी तरह जख्मी हुई और वो लहूलहान हो गई। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और इसी तरह तार से लटकती चीखती और कराहती रही। बहुत देर बाद जब फकीरा उधर से गुजरा और झाड़ियों से मिर्चियां टमाटर तोड़ने के लिए उस तरफ आया, तो उसने बड़ी मुश्किल से रेशम को बाड़ में से निकाला और अंदर ले गया। रेशम पट्टियों में बंधी नजदीक अपनी टोकरी में पड़ी रहती है। सारी दुनिया सुकून थी, सिर्फ मैं एक रूपोश मुजरिम की तरह ऊंची ऊंची घास में खड़ी सोच रही थी कि अब क्या करूं। आखिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद के कमरे की तरफ गई और दरीचे में से झांका। वालिद आराम कुर्सी पर बैठे कुछ पढ़ रहे थे। मैं अंदर गई और कुर्सी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। क्या बात है बीवी, मेरी सिस्टी की आवाज पर उन्होंने पूछा। रेशम को हमने बाड़ में फेंक दिया था। आपने फेंक दिया था? हम कमला विमला के यहाँ जाने की जल्दी में थे और इतना मना करने के बावजूद वो हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हमने उसे जल्दी से बाग के अंदर फेंक दिया। इतना कहकर मैंने दारो कतार रोना शुरू कर दिया। रोने के बाद दिल हल्का हुआ और जुर्म का थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा प्रायश्चित भी हो गया, मगर रेशम की तकलीफ किसी तौर से कम न हुई। शाम को साइमन सबक सिखाने के लिए के बाद देर तक उसके पास बैठे रहते और उससे बातें करते। रेशम की रोजाना मरहम पट्टी होती थी। हफ्ते भर में वो एक दफा घोड़ा अस्पताल भेजा जाता था। उसकी रान में घने और लंबे लंबे सुरमई बाल मूंद दिए गए थे और जख्म की गहरी सुर्ख लकीर दूर तक खींची हुई थी। काफी दिनों के बाद उसके जख्म भरे और उसने लंगड़ा कर चलना शुरू किया। एक महीने बाद वो आस्ता आस्ता लंगड़ा कर साइमन के पीछे पीछे फाटक तक गई और जब फकीरा उसके लिए छीसे लेकर आया तो उसने इस तरह लंगड़ाती हुई कोने में जाकर अपने बर्तन तक जाने लगी। एक रोज सुबह के वक्त मिस्टर जॉर्ज बैकेट बाड़ पर नमूदार हुए और जरा झिझकते हुए उन्होंने मुझसे कहा, रेशम की थी वही तबीयत अब कैसी है? मिस्टर साइमन ने बताया था कि वो जख्मी हो गई थी। मिस्टर जॉर्ज बैकेट ने पहली बार इस महल में किसी से बात की थी। मैंने रेशम की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और अपने चारखाना कोट की फटी हुई जेबों में अंगूठे ठूंस कर आगे चले गए। मिस्टर जॉर्ज बैकेट एक बेहद फाकादादा एंग्लो इंडियन थे और पिलपिली साहब कहलाते थे। वो सड़क के सिरे पर एक खस्ताहाल कोठी में रहते थे और बाल्टी उठाकर सुबह को रोज म्यूनिसिपैलिटी के नल पर खुद पानी भरने जाते थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम डायना था। वो रेडियो परेड ग्राउंड पर एक अंग्रेजी सिनेमा हॉल में टिकट बेचती थी और खुश रंग फ्रॉक पहने सामने से साइकिल पर गुजरा करती थी। उसके पास सिर्फ चार फ्रॉक थे जिन्हें वो धोकर पहनती थी और मिसेस गोस्वामी, मिसेस फारूकी और मिसेस जसवंत सिंह का कहना था कि सिनेमा हॉल की नौकरी के उसे सिर्फ 25 रुपली मिलते हैं और कैसे ठाट के कपड़े पहनती है, इसे गोरे पैसे देते हैं। लेकिन गोरे अगर पैसे देते थे, ये मेरी समझ में कभी ना आया कि गोरे उसे पैसे क्यों देते थे। तो उसका बूढ़ा बाप नल पर पानी भरने क्यों जाता था? इस पेंशन याफ्ता दौलतमंद अंग्रेजों के मोहल्ले में जो अपनी कोठियों में खामोशी से रहते थे, उनकी इंतहाई हिफाजत सजे हुए कमरों और बरामदों में इलस्ट्रेटेड न्यूज, टैटलर, कंट्री लाइफ और पंच के अंबार मेजों पर रखे रहते थे। ये लोग मुद्दतों से इस मुल्क में रहते आए थे, मगर कोई हाय और अब्दुल छोटा हाजरी लगाओ से ज्यादा अल्फाज न जानते थे। ये अंग्रेज दिन भर बागबानी करते या बर्ड वॉचिंग या टिकट जमा करते, ये बड़े अजीब लोग थे। मिस्टर हार्ट कासल कीमती जबान और रस्म रिवाज के माहिर थे। मिस्टर ग्रीन आसाम के खासी कबाइल पर अथॉरिटी थे। कर्नल व्हाइट हेड जो शिमाली मगरबी सरहद के मार्कों में अपनी एक टांग खो चुके थे और लकड़ी की टांग लगाते थे, खुशहाल खां हटक पर अबूर रखते थे। मेजर शेल्डन स्टेट्समैन में शिकार के मुतालिक मजामीन लिखकर करते थे और मिस्टर मार्चमैन को शतरंज का जुनून था। मिसेस वाटरमैन क्रिकेट पर रूहें मिलाती थी और मिसेस वॉलब्रुक तस्वीरें बनाती थी। सरदार मिसेस वॉलब्रुक एक ब्रिगेडियर की बेवा थी और हमारे पिछवाड़े रहती थी। बुरी फूस कुमारी बहन उनके साथ रहती थी। इन दोनों बहनों की शक्लें लंबी चोंच वाले परिंदों की ऐसी थी और ये दोनों अपने तमीर अरीस ड्राइंग रूम के किसी कोने में बैठी आबी रंगों से हल्की फुल्की तस्वीरें बनाया करती थी। वो दोनों इतनी मुख्तसर सी थी कि फूलदार गिलाफों वाले फर्नीचर और दूसरे सामान के जंगल में खो जाती थी और बड़ी मुश्किल से नजर आती थी। डालने वाला की एक कोठी में इंग्लिश स्टोर था जिसका मालिक एक पारसी था। मोहल्ले के सारी अंग्रेज और नेटिव बीवियां यहां आकर खरीदारी करती थी और स्कैंडल और खबरों का तबादला करती थी। इस खुशहाल और मुतमईन मोहल्ले के वाहिद मुफलिस और एंग्लो-इंडियन वासी बुझी बुझी आंखों वाले मिस्टर जॉर्ज बैकेट थे, मगर वो बड़ी आनबान वाले एंग्लो-इंडियन थे और खुद को पक्का अंग्रेज समझते थे। इंग्लिस्तान को होम कहते थे और 4 साल भर जब शहनशाह जॉर्ज पंडन के इंतकाल पर कोलागढ़ में स्लो मार्च पर बड़ी भारी परेड हुई थी और गोरों के बैंड ने मौत का नगमा बजाया था, मिस्टर जॉर्ज बैकेट भी बाजू पर स्याह मातमी पट्टी बांधे कोलागढ़ गए थे और अंग्रेजों के मजमे में बैठे थे और उनकी लड़की डायना रोज ने अपने सुनहरे बालों पर एक खूबसूरत स्याह हैट और स्याह जाली से छुपाया और मिस्टर बैकेट बहुत दिनों तक स्याह मातमी पट्टी बांधे घूमा किए। लेकिन बच्चे बहुत बेरहम होते हैं। डालनवाला के सारे हिंदुस्तानी बच्चे मिस्टर जॉर्ज बैकेट को न सिर्फ पिलपिली साहब कहते थे बल्कि कमला और विमला के बड़े भाई स्वर्ण ने एक मरतबा मिस्टर बैकेट की लड़की डायना को चलाने के लिए एक और तरकीब निकाली थी। कमला और विमला के वालिद एक बेहद दिलचस्प और खुशमिजाज इंसान थे। उन्होंने एक बहुत अनोखा अंग्रेजी रिकॉर्ड 1938 में हिंदुस्तान से खरीदा था। ये एक इंतहाई बेतुका गाना था जिसे एंग्लो इंडियन उर्दू में उसका तर्जुमा भी किया गया था। इस धुन में गाया गया था जिसे किसी अंग्रेज ने तसनीफ किया था और रिकॉर्ड अब स्वर्ण के कब्जे में था। जब डायना साइकिल पर उनके सामने से गुजरती तो वो उस ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड लगा देता और सुई रिकॉर्ड में रख के छुप जाता और मंगलिया जेल बुलंद पाया गीत की आवाज बुलंद होती। देर वॉज ए रिच मर्चेंट इन लंदन रीड्स के हु हैड फॉर हिज डॉटर एन अनकॉमन लाइकिंग। Her name, it was Diana. She was 16 year old and had a large fortune in silver and gold. एक बार एक सौदागर शहर लंदन में था जिसकी एक बेटी नाम डायना उसका नाम उसका डायना 16 वर्ष का उम्र जिसके पास बहुत कपड़ा चांदी और सोना As Diana was walking in the garden one day, her father came to her and thus did he say, Go and dress yourself up in gorgeous array, for you will have a husband both gallant and gay. एक दिन जब डायना बगीचा में थी बाप आई और बोली बाप आई और बोली बेटी जा कपड़ा पहनो और हो सफा अरे वास्ते एक खामिन लाया ओ फादर डियर फादर आई हैव मेड अप माई माइंड टू मैरी एट प्रेजेंट आई डोंट फील इनक्लाइंड एंड ऑल माई लार्ज फॉर्च्यून एवरी डे अडोर इफ यू लेट लिव मी सिंगल A year or two more. अरे अरे मोरा बाप तब बोली बेटी शादी का इरादा मैं नहीं करती अगर एक दो बरस तकलीफ नहीं लियो अरे मैं दौलत बिल्कुल छोड़ दूं Then gave the father a gallant reply. If you don't be this young man's wife, I'll leave all your fortune to the nearest of things and you shan't have a single thing. तब बाप बोला अरे अरे मोरी बेटी अरे अरे बच्चा बेटी इस शख्स की जोरू तू नहीं होती माल और असबाब तेरा कुर्की कर दियो और एक कच्ची दमड़ी भी तुझे नहीं दियो As Vilikin was walking, In the garden one day, he found his dear daughter Diana lying dead on the way. A cup so fearful that lay by her side, and Vilikin that fainted with a cry in his eye.